بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ پارٹ ون ہے. آج ہم کتاب داستان امیر حمزہ کی دوسری جلد پراسرار جزیرہ ریکارڈ کر رہے ہیں. یہ کتاب کرتبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. اس کے مصنف مقبول جہانگیر ہیں. مزید کتب کی ریکارڈنگ کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں 03212138225 یا ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں www.kartaba.org www.qurtaba.org. تو آئیے سنتے ہیں پارٹ ون. نوشیروان کا تخت. حشام عرب کے ایک شہر خیبر میں پیدا ہوا تھا. اس کا باپ القمان اپنے زمانے کا بہت بڑا نامی گرامی لٹیرا تھا. لوگ اس کی حرکتوں سے پریشان اور خوفزدہ رہتے تھے. کئی بار یہ شخص پکڑا گیا اور اس کی پیٹ پر کوڑے برسائے گئے، لیکن اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا. اور اس نے اپنے بیٹے حشام کو بھی ایک خوفناک ڈاکو بنانے کے لیے دن رات تربیت دینی شروع کر دی. حشام اپنے باپ سے بھی زیادہ پتھر دل اور بے رحم نکلا. اسے کسی پر ترس نہ آتا. جب وہ چھوٹا تھا تو غلیل یا تیر کمان لے کر جنگل میں نکل جاتا اور معصوم پرندوں کو مارتا. اس میں اسے بڑا مزہ آتا تھا. جوان ہوا تو انسانوں کو مارنے لگا، بے گناہ لوگوں کا مال اسباب لوٹتا اور ان کے ناک کان کاٹ کر بھاگ جاتا. الکما مر گیا تو اس کی جگہ حشام نے لے لی. اس نے اپنے ہی جیسے بدماشوں اور اچکوں کو جمع کر کے ایک بہت بڑا گروہ بنا لیا اور بے دھڑک تاجروں کے قافلوں کو لوٹنے لگا. تھوڑی ہی عرصے میں اس کے ظلم و ستم کی کہانیاں سارے ملک میں پھیل گئیں. ایران کے بادشاہ نوشیروا تک شکایت پہنچی کہ حشام ڈاکو نے لوگوں کی نیندیں حرام کر دی ہیں. تو اس نے کئی بار اپنی فوج بھیجی کہ حشام کو گرفتار کر لائے، مگر وہ ہر بار کوئی نہ کوئی جل دے کر صاف نکل جاتا. اس زمانے میں حیبر حکومت ایران کے ماتحت تھی اور حیبر کے لوگ ایرانی بادشاہ کو حراج یا ٹیکس دیا کرتے تھے. اب حشام کی جرات اتنی بڑھ گئی کہ اپنے گروہ کے ساتھ دن کی روشنی میں شہر کے اندر آ جاتا اور جسے جو چاہتا کرا لیتا. دکانداروں سے دیکھتے ہی تھر تھر کانپنے لگتے اور کسی کی مجال نہ تھی کہ اس کے سامنے چوں بھی کرے. ایک دن جبکہ حشام شہر میں گھوم رہا تھا، نوشیروان کی فوج کے سپاہی بھی وہاں آ گئے. ان کا مقصد اس وقت حشام کو پکڑنے کا نہ تھا، وہ خیبر کے لوگوں سے اپنا سالانہ حراج وصول کرنے آئے تھے. حشام کو پتہ چلا تو وہ اپنے آدمیوں کو لے کر اسی وقت شاہی فوج کے مقابلے میں آ گیا اور ایسا حملہ کیا کہ فوج کے بہت سے سپاہی مارے گئے اور جو بچے وہ بھاگ نکلے. حشام نے حیبر کے لوگوں کو جمع کیا اور یوں تقریر کی، اے بھائیو، تم مجھے ڈاکو یا قاتل جو کچھ بھی سمجھو بجا ہے. میں نے تم پر بڑے ظلم کیے ہیں، مگر نوشیروان کے سپاہی بھی کچھ کم ظلم نہیں کرتے. میں چاہتا ہوں کہ تمہیں نوشیروان کی غلامی سے آزاد کر دوں. اس کے لیے ضروری ہے کہ تم اب وہ حراج مجھے ادا کرو جو نوشیروان کو ادا کرتے ہو، تاکہ میں اس روپے میں سے ایک بہت بڑی فوج تیار کر کے نوشیروان سے جنگ کروں. خیبر کے لوگ نوشیروان کے سپاہیوں سے بھی اتنے ہی تنگ تھے جتنے حشام ڈاکو سے، لیکن انہوں نے صرف اس خیال سے کہ وہ دونوں طرف سے لوٹنے کے بجائے ایک ہی طرف سے لوٹتے رہیں حشام کو دل کھول کر روپیہ دیا. چند دن کے بعد حشام نے 50,000 جوان کی ایک فوج تیار کر لی اور اس کو بہترین ہتھیاروں سے لیس کر کے ایران کے دارالحکومت مدائن کی جانب روانہ ہوا. راستے میں جتنی بھی بستیاں اور گاؤں ملے سب کو جی بھر کر لوٹا، آگ لگائی اور قتل عام کیا. حشام کے آنے کی خبر نوشیروان کے کانوں تک پہنچی تو وہ بڑا فکر مند ہوا. اس نے اپنے وزیروں سے مشورہ کیا. انہوں نے رائے دی کہ حشام کے مقابلے کے لیے خود بادشاہ کو فوج لے کر نکلنا چاہیے، مگر وزیر اعظم بزرگ مہر نے کہا، جہاں پناہ، اس غلام کی رائے میں یہ مشورہ صحیح نہیں. آپ اتنی بڑی سلطنت کے بادشاہ ہیں اور حشام ایک گھٹیا درجے کا لٹیرا ہے. آپ کو یہ ہرگز زیب نہیں دیتا کہ ایک ڈاکو کے مقابلے کے لیے جائیں. فرض کیجئے آپ کو فتح بھی ہوئی تو لوگ کہیں گے ایک ڈاکو کو شکست دے کر آپ نے کیا کمال کیا، اور اگر آپ ہار گئے تو یہ بڑی شرم کی بات ہوگی. نوشیروان نے اس بات پر غور کیا تو اسے بزرگ مہر کی اس دلیل میں وزن محسوس ہوا. کہنے لگا، بے شک تمہارا کہنا ٹھیک ہے، حشام کے مقابلے میں ہمارا جانا اچھا نہیں ہوگا، لیکن اس مصیبت سے نجات پانے کی کوئی تدبیر بھی ہونی چاہیے. تدبیر یہ حالی جا کہ کسی بہادر پہلوان کو مدائن کے قلعے کی حفاظت کے لیے مقرر کیجیے. آپ شکار کے ارادے سے جنگل میں نکل جائیے اور اعلان کر دیجیے کہ آپ 40 دن تک جنگل میں رہیں گے. میں نے علم نجوم سے حساب لگایا ہے کہ آپ کے یہ 40 دن آپ کے لیے سخت منحوس ہیں، آپ کو شہر میں نہیں رہنا چاہیے. नौशेरवान ने इसी वक्त अशरफेल नाम के एक पहलवान को बुलाया। वो मस्त हाथी की तरह झूमता हुआ आया और बादशाह के तख्त को बोसा देकर खड़ा हो गया। नौशेरवान ने उससे कहा, देखो हम शिकार खेलने जंगल में जा रहे हैं, 40 दिन के बाद वापस आएंगे। सारा शहर और किला तुम्हारी हिफाजत में है। अगर हमारे पीछे दुश्मन शहर पर हमला करे तो सब शहरियों और फौज को किले में ले जाना और हरगिज हरगिज किले से बाहर निकलकर मत लेना। अशरफेल पहलवान ने अर्ज किया, जहाँ पर आकर हुक्म सराखों पर, मैं हुजूर की हिदायत पर अमल करूंगा और किले से बाहर निकलकर दुश्मन का मुकाबला ना करूंगा। नौशेरवान ने बुजुर्ग महर और दूसरे सरदारों को साथ लिया और जंगल की जानिब चला गया। अब मदायन शहर और किले पर अशरफेल पहलवान की हुकूमत थी। इसमें शक नहीं था कि यह पहलवान बहुत बहादुर था, लेकिन उसके खोपड़ी में अकल की जगह भूस भरा हुआ था। जब कोई उसकी तारीफ करता तो वो गधे की तरह फूल जाता। नौशेरवान के जाने के 10 दिन बाद हशाम अपनी फौज को लिए हुए मदायन के नजदीक आन पहुंचा। अशरफेल ने किले के दरवाजे बंद कर दिए और फसील पर से तीरों और नेजों की ऐसी बारिश बरसाई कि हशाम के कई हजार आदमी मारे गए। ये देखकर हशाम की आंखों में खून उतर आया। बार बार अपने सिपाहियों को किले का दरवाजा तोड़ने और फसील पर चढ़ने के लिए ललकारता, लेकिन जो ही उसके सिपाही आगे बढ़ते फसील पर से तीरों की बौछार आती और बहुत से सिपाही मारे जाते। आखिर हिशाम ने अपने सिपाहियों को जंग बंद करने का हुक्म दिया। सारी रात उसे गुस्से के मारे नींद ना आई। दिल में कहता था कि अगर इसी तरह मेरे सिपाही मौत के मुंह में जाते रहे तो मैं लड़ूंगा कैसे। कोई तरकीब ऐसी की जाए कि अशरफेल पहलवान अपने सिपाहियों को लेकर किले से बाहर निकले। सोचते सोचते खासी देर गुजर गई, मगर कोई तदबीर जहन में न आई। आखिर अपने गुलाम से कहा कि ऐसे शख्स को तलाश करके लाओ जो कभी मदायन के किले में रह चुका हो और गशर पहलवान को पहले से जानता हो। गुलाम ये हुक्म पाकर अपने लश्कर में गया और पूछताछ शुरू की। उसे बहुत जल्द एक ऐसा शख्स मिल गया जो किसी जमाने में अशरफेल पहलवान का दोस्त रह चुका था और अब उसे नाराज होकर हशाम के सिपाहियों में भर्ती हो गया था। गुलाम ने उस आदमी को हशाम की खिदमत में पेश किया। हशाम ने कहा, क्या तुम अशरफेल पहलवान को जानते हो? हाँ जनाब, मैं और वो बरसों एक ही मकान में रहे हैं। खूब, तब तो तुम्हें ये भी मालूम होगा कि इस पहलवान में खूबियां कौन सी और खामियां कौन सी। मैं सब कुछ जानता हूँ जनाब आली, पहले अशरफेल की खूबियां बयान करूँ? हशाम ने कहा। जनाब, वो बड़ा बहादुर, बेहोफ और ताकतवर आदमी है। यही वजह है कि उसका नाम नौशेरवान ने अपने एक हाथी के नाम पर रखा है। लड़ने भिड़ने में कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। और खामियां क्या है जनाबे वाला? उसमें खामियां तो बहुत सी हैं, मगर एक खामी ऐसी है जिस पर वो किसी तरह भी काबू नहीं पा सकता। वो खामी ये है कि वो अपनी तारीफ और खुशामद से बड़ा खुश होता है। अक्सर लोग झूठी तारीफें करके बहुत सी दौलत उसे ईंट लेते हैं। वाह वाह, ये तो बड़े काम की बात तुमने बताई, हशाम ने खुश होकर कहा। ऐसे आदमी पर काबू पाना कुछ मुश्किल नहीं, ये कहकर उसको इनाम देकर रुखसत किया। सुबह सवेरे हशाम ने अपनी फौजों को तैयारी का हुक्म दिया, लेकिन हमले से पहले वो खुद घोड़ा दौड़ाकर किले की फसील के करीब पहुंचा और वहां खड़े हुए सिपाहियों को बुलंद आवाज से पुकार कर कहा, मेरा नाम हशाम है, मैं अशरफेल पहलवान से बात करना चाहता हूँ। सिपाहियों ने फौरन पहलवान को खबर दी और अपनी जानिब से नमक मिर्च लगाकर कहने लगा, शायद आपकी बहादुरी का रोग हशाम पर बैठ गया है, तभी वो सुलह की दरख्वास्त लेकर आए। इस सुनकर अशरफेल की खोपड़ी में खुद शुरू हो गए। दिल में खुश हुआ, सीना फुला, दान निकाले, किले की फसील पर आन खड़ा हुआ और अपनी गर्जदार आवाज में शाम से कहने लगा, मेरा नाम अशरफेल है, कहो क्या इरादे हैं? लड़ोगे या उल्टे कदमों वापस जाने की तैयारी है? जनाब, मेरे बाप दादा की तौबा जो मैं आपसे लड़ने की जरूरत करूं। मुझे ये मालूम ना था कि किले में आप मौजूद हैं। मैं आपका नाम और कारनामे सुन चुका हूं और मुझे आपसे मुलाकात का बड़ा शौक था, मगर अफसोस के इन हालात में मुलाकात हुई। मेरी खता माफ फरमाइए, मैं आज शाम यहाँ से रुखसत हो जाऊंगा। आपसे लड़ने की हिम्मत नहीं, जी चाहे तो थोड़ी देर के लिए किले से बाहर तशरीफ लाइए ताकि मैं आपके कदम चूम लूं। अशरफेल ने शाम के मुंह से ये हुशामदाना जुमले सुने तो खुशी के मारे सब कुछ भूल गया। उसे ये भी याद न रहा कि नौशेरवान ने कहा था, उन्हें हिदायत की थी उसे उसी वक्त फौज के साथ बड़ी शान और शौकत से बाहर निकल आया ताकि शाम को अपने पांव चूमने का मौका अता करे। हशाम सबर से अपनी जगह खड़ा रहा और जब उसने देखा कि पहलवान अपनी फौज को पूरी तरह मैदान में ले आया है तो उसने यकायक जबरदस्त नारा लगाकर अपने सिपाहियों को हल्ला बोलने का हुक्म दिया। हशाम के सिपाही भूखे शेरों की तरह अशरफेल पहलवान की फौज पर टूट पड़े और थोड़ी देर में लाशों के अंबार लगे। मैदान जंग में नजर आने वाले पहलवान में नजर आने लगे पहलवान समझ गया कि हिशाम ने चकमा देकर बुलाया था। वो जान बचाने के लिए किले की तरफ भागा, मगर हिशाम ने उसे भागने का मौका न दिया। उसने पहलवान के सीने में इस जोर से नेजा मारा कि उसकी अनी सीना तोड़ती हुई निकल गई। एक होलनाक चीख के साथ पहलवान जमीन पर गिरा और तड़पने लगा। उसी लम्हे हिशाम ने तलवार से उसका सर काटकर नेजे पर चढ़ा दिया। पहलवान की फौज ने जब अपने सिपा सलार का यह हश्र देखा तो उनके पांव उखड़ गए और हिशाम आनंद फानंद शहर के अंदर जा घुसा। कई हजार लोगों को कत्ल किया और उनके मकान लूट लिए, मगर बादशाह के महल का रुख किया उसे भी जी भरकर बर्बाद किया और नौशेरवा के तख्त और ताज पर भी कब्जा जमा लिया। अब इसके जुल्म की कोई हद न रही, लोग उसे देखते ही सजदे में गिर जाते। नौशेरवान की फौज के वो सिपाही जिनकी जानें बच हुई थी अब हिशाम की फौज में शामिल हो चुके थे। बदायूं को तहस नहस करने के बाद हिशाम ने वहां से कूच किया और एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा जहां दो रास्ते निकलते थे, एक रास्ता हैबर को और दूसरा मक्के को जाता था। हिशाम फतह और ताकत के नशे में चूर था, इसलिए हैबर जाने के बजाय उसने मक्के का रास्ता अख्तियार किया और अपने साथियों से कहने लगा, मैंने सुना है कि मक्के में एक ऐसा शख्स पैदा हुआ है जो अरब के तमाम पहलवानों को हरा चुका है। उसने बहुत बड़ी फौज तैयार की है और हाल ही में यमन के बादशाह को भी शिकस्त दी है। मैं इस शख्स से दो दो हाथ करना चाहता हूँ। इसके साथियों ने भी इसकी हाँ में हाँ मिलाई और फिर 1,00,000 सिपाहियों का एक लश्कर मक्के को तबाह करने की नीयत से रवाना हुआ। उधर हज अब्दुल मतलब के कानों तक भी यह खबर पहुंच गई कि हिशाम डाको एक जबरदस्त फौज लेकर मक्के पर चढ़ाई के इरादे से आ रहा है। इस खबर से मक्के के लोगों के होश उड़ गए और वो हिशाम के खौफ से थर थर कांपने लगे। हज अब्दुल मतलब सीधे खाना काबे में गए और रो रो कर खुदा से दुआ मांगने लगे कि ए खुदा, तेरे दुश्मन तेरे घर को बर्बाद करने की नीयत से इधर आ रहा है, अब तू ही उसके हमले से अपने घर और शहर में रहने वालों की हिफाजत फरमा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की दुआ खुदा ने कबूल की और इसी रोज अमीर हमजा मुल्क यमन को फतह करने के बाद अपनी फौज के साथ वापस आ गए। हजरत साहब ने अपने बहादुर बेटे को सीने से लगाया और यमन की फतह पर मुबारकबाद दी, मगर फिर फौरन ही उनकी आंखों में आंसू आ गए। अमीर हमजा बेचैन होकर कहने लगे, अबा जान, आप हंसने की बजाय रोते क्यों हैं? क्या मेरी किसी बात से रंज पहुंचा? नहीं बेटा, रंज कैसा, मैं तो इसलिए रोता हूं कि हिशाम डाकू 1,00,000 सिपाहियों की फौज लेकर मक्के की तरफ आ रहा है। वो खुदा की महलूक का कत्ल आम करने के साथ साथ खाना काबा को भी बर्बाद करेगा। अमीर हमजा मुस्कुराए, उन्होंने कहा, बस इतनी सी बात पर आप फिक्रमंद हो गए? ये तो अच्छा ही हुआ कि हिशाम खुद इधर आ रहा है, वरना मुझे उसके पीछे जाना पड़ता। उसे आने दीजिए, खुदा ने चाहा तो वो मेरे हाथ से बचकर नहीं जाएगा। बेटा, तुम नहीं जानते कि वो कैसा जालिम और बेरहम शख्स है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, और जब नौशेरवान जैसे ताकतवर बादशाह को शिकस्त दे दी तो तुम क्या कर लोगे? बेहतर यही है कि हम लोगों को हमारे हाल पर छोड़ो और खुद मुल्क हफ्शा की जानिब चले जाओ। मैं हफ्शा के बादशाह को खत लिखे देता हूँ, वो तुम्हें अपने मुल्क में हिफाजत से रखेगा। अब्बाजान, आप कैसी बातें करते हैं? अमीर हमजा ने कहा, अपने अजीज शहर और शहर के लोगों को दुश्मन के रहम पर छोड़कर मैं हफ्शा हरगिज न चाहूंगा। क्या आप ये चाहते हैं कि लोग आपके बेटे को बुजदिली के ताने दें? आप बिल्कुल फिक्र न कीजिए, शिकस्त और फतह खुदा के हाथ में है और मुझे उसकी जात से उम्मीद है कि वो हमें शाम के मुकाबले में कभी जलील न होने देगा। बहादुर बेटे की बातें सुनकर हाजा अब्दुल मुत्तलिब को कुछ तसल्ली हुई। अमीर हमजा ने उनके हाथ चूमे और कहा, आप अब घर जाकर आराम फरमाइए, हिशाम अगर आया तो मैं उससे निबट लूंगा। हजरत अब्दुल मतलब ने बेटे को सीने से लगाया, फिर दोनों सीधे खाना काबे में गए, खुदा से इस जंग में कामयाबी की दुआएं मांगने लगे। शाम के वक्त अमीर हमजा की फौज के चंद सवार शहर में आए और उन्होंने खबर दी कि हिशाम का लश्कर आन पहुंचा और इस वक्त मक्के से कोई 10 मील के फासले पर पड़ाव कर रहा है। अमीर ने इसी वक्त अपनी फौज से 3,000 जांबाज सिपाही चुन लिए और जब सूरज छुप गया और रात के अंधेरे तेजी से फैलने लगे तो 3,000 का यह दस्ता अमीर हमजा की सिपा सलारी में मक्के से बाहर निकला। उनके घोड़े आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे और कोई शख्स एक दूसरे से बात न करता था। अमीर हमजा ने फैसला किया कि आधी रात को जब हिशाम के थके मांदे सिपाही बेहबर पड़े सो रहे होंगे तो उन पर अचानक हमला किया जाए। उसे दुश्मन पर शब हून मारना कहते हैं। जब अमीर हमजा और उनके फौजी दस्ता मक्के से 10 मील दूर पहुंचा तो एक वीरान पहाड़ के दामन में हिशाम का लश्कर पड़ाव किए हुए नजर आया। घोड़ों के हनहनाने की आवाज साफ आ रही थी और कहीं कहीं चर्बी से जलने वाली मछलें भी रोशन थी। लश्कर के अक्सर सिपाही हराटे ले रहे थे और उनकी हिफाजत करने वाले पहरेदार भी ऊंग रहे थे। लश्कर के ऐन दरमियान में एक ऊंचे टीले पर बहुत बड़ा हैमा लगा हुआ था। मालूम हुआ कि यही हैमा हिशाम का है, बेखबर सोया पड़ा है। अमीर हमजा के साथियों की राय ये थी कि दुश्मन इस वक्त सो रहा है, फौरन हल्ला बोल दिया जाए, लेकिन उन्होंने इस राय को नहीं माना। कहने लगे कि सोए हुए दुश्मन पर हमला करना बहादुरी नहीं, बेहतर यह है कि उसे पहले खबरदार कर दिया जाए। ये कहकर उन्होंने अपने साथियों को हशाम के लश्कर के गिर्द घेरा डालने का हुक्म दिया और फिर अपना घोड़ा आगे बढ़ाकर एक टीले पर जा खड़े हुए। यहां से हशाम का लश्कर दूर दूर तक नजर आता था। अब सिपा सरार के इशारे पर जिब्रान ने लोहे का बना हुआ एक करना निकालकर मुंह से लगाया और जोर से बजाया कि उसकी आवाज से हशाम के सिपाही हड़बड़ाकर उठ बैठे। इतने में अमीर हमजा ने गरजदार आवाज में नारा लगाया और कहा, हशाम के सिपाही और सरदारों, सुन लो और जान जाओ कि मेरा नाम हमजा है और मैं मक्के के सरदार हाजा अब्दुल मुतलिब का बेटा हूँ। अब तुम पर हमला करता हूँ, होशियार और खबरदार हो जाओ। सुनकर हशाम के सिपाहियों में दहशत की एक लहर दौड़ गई, चीहो पुकार और हंगामा बरपा हुआ। भागते हुए सिपाही एक दूसरे से टकरा गए और आपस में गत्थम गत्था हो गए। उधर अमीर हमजा ने हमले का हुक्म दिया और उनके 3,000 सिपाही बिजली के मान दुश्मन पर गिरे। रात भर तलवार चलती रही, हशाम के सिपाही कट कट कर गिरते रहे। हर तरफ लाशों के ढेर लगे थे और खून की नदी बह रही थी, लेकिन हशाम इस हंगामे से बेखबर अपने हेमे में पड़ा सो रहा था। सुबह जब मशरक से सूरज निकला और रोशनी फैली तो हशाम को खबर मिली। वो गुस्से से कांपता हुआ हेमे से बाहर आया और अपने सरदार से पूछने लगा, हमारे लश्कर पर किसने हमला करने की जरूरत की? हुजूर, यह हरकत अमीर हमजा की है, उसने रात की तारीखें में हमारे लश्कर पर शबो हून मारा और 20,000 सिपाही कत्ल कर डाले। हशाम की आंखें कबूतर के खून की मानंद सुर हो गई, चिल्लाकर कहा, इसका मतलब यह है कि अमीर हमजा की मौत उसे खुद ही हमारे पास घसीट लाई है। अच्छा, अभी उसकी खबर लेता हूँ। ये कहकर मुंह से झाग उड़ाता हुआ अपने हेमे में गया और हथियार बदन पर सजाकर और एक वहशी गैंडे पर सवार होकर मैदान जंग में आया। इस वक्त जिसने भी उसको देखा काम गया, उसके सर पर चमकदार फौलादी हुद धरा हुआ था जिस पर किसी जानवर के खूबसूरत बाल लिपटे हुए थे। जिस्म पर फौलादी जरा पेटी में कई कई हंजर, दाएं हाथ में तलवार, पुश पर कमान और जहरीले तीरों से भरा हुआ तरकश, गैंडे की गर्दन से बंधा हुआ लंबा नेजा और दुम से लटका हुआ बड़ा कुल्हाड़ा, वो नारे मारता हुआ मैदान जंग में आया और कहने लगा, मेरा नाम हशाम है और मैं अलकमा डाकू का बेटा हूँ। नौशेरवा को मैंने शिकस्त दी और मेरे नाम से सारा जहाँ थर थर कांपता है। मैं अपने वक्त का रुस्तम हूँ जिसको मौत की आरजू है मेरे सामने आए। अमीर हमजा ने घोड़ा बढ़ाया और मैदान में पहुंच गए। उन्होंने देखा कि एक देव जैसा शख्स जिसके चेहरे का रंग तवे की मानत काला है, वैशी गैंडे पर सवार, हथियार बदन पर सजाए मैदान जंग में घूम रहा है। या अमीर, यही हशाम है, उमरों ने कहा डर कर। इससे मुकाबला करना आसान नहीं, फिक्र न करो, देखते जाओ इसका क्या हशर होता है, अमीर हमजा ने कहा और बुलंद आवाज से शाम को आवाज दी, ओ डाकू के बच्चे, इधर आ, मैं अमीर हमजा हूँ और तेरी मौत बनकर यहाँ आया हूँ। याद रख, अगर तूने मेरी इताअत कबूल ना की और मेरे कदमों पर सर ना रखा तो तेरा सर मेरी ठोकरों में होगा। हशाम ने आवाज सुनी, पलट कर देखा और गैंडे को भगाता हुआ अमीर हमजा के नजदीक आया, लेकिन क्या देखता है, स्याह रंग के एक शानदार घोड़े पर एक अरब नौजवान बैठा है और उसका चेहरा चांदी के मानद सूरज की धूप में चमकता है। इसके लबों पर मुस्कुराहट है और चेहरे पर ऐसा इत्मीनान जैसे मैदान जंग में नहीं किसी पुरफिजा बाग में सैर करने आया है। हशाम ने अमीर हमजा इनके घोड़े और हथियारों को देखने के बाद नर्म आवाज में कहा, ए अरब नौजवान, मुझे तेरी खूबसूरती और जवानी पर तरस आता है। अगर से तूने मेरी शान में गुस्साही की है, लेकिन मैं तुझे इस शर्त पर माफ कर दूंगा कि अपना ये घोड़ा और तमाम हथियार मेरे हवाले कर दे और मेरी इताअत कबूल कर, वरना तू मेरी कुव्वत और हैबत से वाकिफ है। मेरे सामने जब नौशेरवा जैसा शान और शौकत वाला बादशाह न ठहर सका तो तेरी क्या हस्ती है? याद रख, इनकार करेगा तो न सिर्फ तुझे और तेरी फौज को बल्कि तेरे शहर के एक एक बच्चे को कत्ल कर डालूंगा, मकानों को चलाकर राख कर डालूंगा और तुम्हारी लाशों पर रोने वाला भी कोई नहीं होगा। शाम ने अभी ये अल्फाज कहे ही थे कि उमरो बोल उठा, वाह मेरे शेर, क्या तकरीर की है। मैं तो समझता था कि तू वाकई बहादुर आदमी होगा, मगर अब पता चला कि तू सिर्फ बातें बनाना ही जानता है। अभी तेरी सब गली खुल जाती है, ये कौन बदनसीब है? हशाम उमरों की तरफ देखकर बोला। पास खड़े हुए एक शख्स ने बताया कि अमीर हमजा के दोस्तों में से है, उसका नाम उमरों है, उसकी चालाकी और अय्यारी से सब पनाह मांगते हैं। मैंने उसका नाम सुना है, मगर अब लोग उसे भूल जाएंगे क्योंकि ये इसकी जिंदगी का आखिरी दिन है, हशाम ने चिल्लाकर कहा और तलवार निकालकर उमरों की तरफ झपटा। मगर अमीर हमजा ने उसका रास्ता रोक लिया और कहा, अरे बुज़दिल, उधर कहा जाता है हिम्मत है तो मुझसे मुकाबला कर। हिशाम को तैश आया, गैंडे की गर्दन पर उस जोर का हाथ मारा कि गैंडा थर्रा गया और उस तेजी से दौड़ा कि अमीर हमजा की तरफ आया कि जमीन कांपने लगी। अमीर हमजा ने फुर्ती से अपने घोड़े को परे हटाया और हिशाम का घोड़ा अपने ही जोर में दूर तक दौड़ता चला गया और वहां से फिर पलटा। ये तेरा गेंडा है या हरगोश, उमरों ने कहकहा लगाकर कहा। अब तो हिशाम का रंग तांबे की तरह सुर्ख हो गया, नेजा तान कर अमीर हमजा की जानिब लपका। अमीर ने भी अपना नेजा संभाल लिया और हिशाम के नेजे पर पूरी कुव्वत से मारा। नेजा उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। अब उसने तलवार सौंती और फिर दोनों में ऐसी तलवारबाजी हुई कि दोस्त और दुश्मन सभी अश अश कर उठे। कभी अमीर हमजा हिशाम को धकेलते हुए दूर तक ले जाते और कभी हिशाम अमीर हमजा को धकेलकर मैदान जंग के किनारे ले जाता। आए दोनों पसीने में तर हो गए और हाँपने लगे, मगर हार जीत का फैसला न हो सका। ये कही अमीर हमजा ने अल्लाह अकबर का ऐसा नारा मारा कि हिशाम की बोटी बोटी कांप उठी और तलवार उस जालिम के हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। इसी वक्त अमीर हमजा ने उसके सर पर पूरी ताकत से तलवार मारी जिसकी फौलादी टोपी को काटती हुई खोपड़ी में उतर गई और फिर खोपड़ी को दो हिस्सों में तकसीम करके सीने तक पहुंची। हिशाम दड़ाम से जमीन पर आ गिरा। अपने सरदार को मरता देखकर उसके लश्कर में गुल मचा और सिपाही भागने लगे, मगर अमीर हमजा के आदमी ने उन्हें भागने का मौका न दिया और गाजर मूली की तरह काटने लगे। आखिर उन्होंने हथियार डाल दिया और अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दिया। हिशाम ने शेरवान का ताज और तख्त मदायन से लाया था और वो अमीर हमजा ने हासिल किया। इसके अलावा इन तमाम कैदियों को रिहाई दिलाई जिन्हें हिशाम गुलाम बनाकर मैदान से पकड़ लाया था। ये लोग अमीर हमजा की उनकी जान को दुआएं देते हुए अपने वतन की जानिब रवाना हुए। अमीर हमजा इस अजीम उशान फतह के बाद खुशी के शादियाने बजाते हुए मक्का में वापस आए। मक्के के लोगों ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। रात को सारे शहर में चरागाह हुआ और मिठाई तकसीम की गई। दशहरवा का कीमती तख्त और ताज ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब ने अपने घर में हिफाजत से रखवाया। अगले रोज एक खत लिखा मुकबिल वफादार को दिया कि नशेरवा के हुजूर में ले जाए। इसमें लिखा था कि अमीर हमजा ने हिशाम को कत्ल करके आपका तख्त और ताज उससे छीन लिया है, अगर हुक्म हो तो ये सब सामान मदायन रवाना किया जाए। मुकबिल वफादार ने इसी वक्त सफर की तैयारी की। ख्वाजा साहब ने उसे नशेरवा के लिए बेशुमार कीमती तोहफे दिए और ये काफिला मदायन की तरफ रवाना हो गया। हैरत अंगेज कारनामा। चाले दिन जंगल में रहने के बाद जब नशेरवा मैदान में आया तो शहर का अजीब हाल देखा। सारा शहर वीरान और बर्बाद पड़ा था और किले में हर तरफ सिपाहियों की लाशें बिखरी हुई थी। जख्मियों की कोई गिनती न थी। लाशों को कुत्ते और गिद्ध नोच नोच कर खा रहे थे। बादशाह का महल लुट चुका था और सारा कीमती सामान गायब था। दुश्मन ने शेरवा का तख्त और ताज भी ले गया था। इस तबाही और बर्बादी को देखकर नशेरवा की आंखों में आंसू आ गए। यही हाल बुजुर्ग महर का था। मालूम हुआ कि गशर फेल पहलवान ने बादशाह की हिदायत पर अमल न किया और किले से बाहर निकलकर हिशाम से लड़ने चला गया। आखिर उसने धोखे से पहलवान को कत्ल किया और मदायन शहर में आकर लूटमार और कत्ले आम किया। नशेरवा ने बुजुर्ग महर से कहा, मैंने जो ख्वाब देखा वो बिल्कुल सच निकला, मगर इस ख्वाब की जो तावीर तुमने बताई थी वो अब तक सामने नहीं आई। तुमने कहा था कि हिशाम कत्ल होगा और मेरा तख्त तो आज वापस मिल जाएगा। हुजूर ज्यादा रंज ना करें, खुदा ने चाहा तो आपके ख्वाब की ताबीर बहुत जल्द पूरी होगी। नशेरवा ने जुबान से कुछ और ना कहा, मगर उसके तेवरों से अंदाजा होता था कि बुजुर्ग महर की बात उसके दिल को इत्मीनान नहीं हुआ। बादशाह की हालत देखकर बख्तक वजीर के दिल में शैतान ने डेरा जमाया। सोचने लगा कि इस वक्त बादशाह बुजुर्ग महर से नाराज है, इस मौके से फायदा उठाकर बुजुर्ग महर के खिलाफ बादशाह को भड़काना चाहिए। उसने अपने कबीले के लोगों को जमा किया। ये सासानी नस्ल के थे। बख्तक ने उसे कहा, भाइयों, ये सब बुजुर्ग महर की नालायकी की वजह से हुआ है कि हिशाम जैसा डाकू शहर पर चढ़ गया और उसने तुम्हारे मकान लूटे, तुम्हारे आदमियों को कत्ल किया और तुम्हारी औरतों और बच्चों को गुलाम बनाकर ले गया। बादशाह अगर शहर में होता तो हिशाम को उसका मुकाबला करने की जरूरत ही न होती। बुजुर्ग महर ने बादशाह को मशवरा दिया था कि शहर छोड़कर जंगल को चला जाए। असल में शख्स हमारी कौम का दुश्मन है। अब मौका आया है कि बादशाह से उसकी शिकायत की जाए। तुम लोग रोते पीटते सरों पर हाक डालते हुए महल की तरफ जाओ और बादशाह से फरियाद करो, मैं भी वहां पहुंच रहा हूं। बख्तक ने लोगों को खूब सिखा पढ़ाकर एक जुलूस की सूरत में नशेरवा के महल की जानिब रवाना किया और आप उनसे पहले महल में पहुंचकर नशेरवा के सामने हाथ बांधकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद बादशाह ने महल के बाहर बहुत से लोगों को रोते पीटते और चीखते चिल्लाते देखा। हैरान हुआ और बख्तक से कहने लगा, मालूम करो ये लोग क्यों रोते हैं और यहाँ किस लिए आए हैं। बख्तक महल के झरोके पर गया और चंद मिनट बाद वापस आकर बाहिर से कहा, जहां पना कौमे सासानी के कुछ लोग अपनी मुसीबत की कहानी कहने आए हैं, बाहर तशरीफ लाकर उनकी तसल्ली कर दीजिए। नौशेरवा ये सुनकर उठा और महल के झरोके पर जा खड़ा हुआ। क्या देखता है कि कई हजार औरतें और बच्चे बाहर खड़े छाती पीट पीट कर रो रहे हैं और उनकी जुबानों पर बुजुर्ग महर का नाम है। हर शख्स चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, बुजुर्ग महर गद्दार है, नमक हराम है, उन्हें दुश्मन को यहाँ बुलाया, उसे फांसी पर लटका दिया जाए। बादशाह ने ये नारे सुने और बुजुर्ग महर की जानब देखा जो चुपचाप खड़ा था। आखिर बादशाह ने हाथ ऊपर उठाया, मातम करने वाले लोग खुश हुए। तब बादशाह ने पूछा, तुम लोग क्या चाहते हो और बुजुर्ग महर ने तुम्हें क्या नुकसान पहुँचाया? जहाँ पना का इकबाल बुलंद हो, हुजूम में से एक शख्स चिल्लाया, बुजुर्ग महर आपका और हमारा दुश्मन है। अगर ये शख्स हुजूर को शहर छोड़कर जंगल में जाने का मशवरा ना देता तो शाम का भी इधर आकर हमारे आदमियों को मौत के घाट न उतारता और न उसे हुजूर का तख्त और ताज छीन कर ले जाने की जरूरत होती। ये सब किया धरा इस बुजुर्ग महर का है जो बहुत अक्लमंद बनता है। कौम और मुल्क से गद्दारी करने वाले की सजा मौत है, इसलिए बुजुर्ग महर को इसी वक्त हमारे सामने हलाक किया जाए, वरना जहाँ पना हमको इजाजत दें कि हम ये शहर हमेशा के लिए छोड़कर चले जाएं। ये कहकर इन शरीर लोगों ने सरों पर हाक उड़ानी शुरू कर दी और सीने पीट पीट कर रोने लगे। नौशेरवा ने गजब की नजर से बुजुर्ग महर को देखा और कहने लगा, बोलो, जवाब दो, ये लोग क्या कहते हैं? क्या तुम अपनी सफाई पेश अगर तुमने अपनी सफाई पेश ना की तो हम तुम्हें जिंदा दफन करा देंगे। जहाँ पना, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता कि आप जरा सब्र से काम लें, इन लोगों की बातों पर ना जाएं। ऐसा मालूम होता है कि लोग यहाँ खुद नहीं आए, इन्हें सिखा पढ़ा कर लाया गया है। इस सुनकर बख्तक के होश उड़ गए, दिल में डरा कि शायद किसी जरिए से बुजुर्ग महर को इस साजिश का पता चल गया है जो मैंने अपनी कौम के लोगों से मिलकर की है। ऐसा ना हो कि नौशेरवा अपनी राय बदल दे। ये सोचकर आगे बढ़ा, नौशेरवा के आगे झुक गया और कहने लगा, जहाँ पना, आप इन बदनसीबों की फरियाद पर गौर कीजिए, इनका सब कुछ लुट गया है। छोटे छोटे बच्चे, यतीम और सैकड़ों औरतें बेवा हो गई है। ये लोग आपसे इंसाफ तलब करते हैं। अगर कोई शख्स इन लोगों की नजरों में मुजरिम है तो उसे सजा दिए बगैर ना छोड़े। अभी नौशेरवा कोई फैसला नहीं कर पाया था कि शहर में कुछ शोरों गुल मचा और फिर एक जुलूस आता दिखाई दिया। चंद लम्हे बाद घुड़सवारों का ये जुलूस महल के नीचे आकर रुका। इन सब के आगे आने वाला एक फौजी सिपाही जल्दी से घोड़े से नीचे कूदा और घुटनों के बल झुककर बादशाह को सलाम किया और फिर सीधा खड़ा हुआ और कहने लगा, हुजूर, ये गुलाम एक खुशखबरी लाया है। हशाम डाकू और उसकी फौज को अमीर हमजा ने कत्ल कर दिया है और जिन हजारों आदमियों को वो मदायन से कैद करके ले गया था वो सब लोग भी आजाद होकर वापस आ रहे हैं। इनके अलावा अमीर हमजा ने हुजूर का तख्त और ताज भी हशाम से छीन लिया है। अब उनका एक वफादार दोस्त जिसका नाम मुकबिल है, हुजूर के नाम मक्के के सरदार अजा अब्दुल मुतलिब का हाथ लेकर आया है और मदायन से 4 मील दूर उतरा है। इजाजत हो तो अमीर हमजा का एलचे दरबार में हाजिर होकर हथ पेश करे। नौजवान का चेहरा खुशी से खिल उठा। इसी वक्त बुजुर्ग महर को गले लगा लिया और कहने लगा, ए उस्ताद, मेरा कसूर माफ करो, मैंने तुम्हारी शान में गुस्ताही की और ये सब कुछ इस बदमाश बख्तक की कास्तानी मालूम होती है। इसे ऐसी सजा दूंगा कि इसकी 7 पुश्तें याद करेंगी। बुजुर्ग महर नेक और शरीफ आदमी था, उसने कह सुनकर बख्तक का कसूर माफ करा दिया। फिर नौशेरवा से कहा कि फौज का एक दस्ता मुकबिल वफादार के इस्तकबाल के लिए रवाना किया जाए ताकि उसे धूमधाम से शहर में लाए। अगले रोज सुबह नौशेरवा ने दरबार किया और मुकबिल वफादार बादशाह के हुजूर में आया। इससे पहले दो जानू होकर बादशाह और फिर बुजुर्ग महर को सलाम किया। इसके बाद हाथी दांत का बना हुआ एक नहायत खूबसूरत संदूकचा खोलकर उसमें से ख्वाजा अब्दुल मुतलिब का हाथ निकाला जो सब रेशम की एक थैली में बंधा था। यह हाथ एक खुशबूदार और पतले चमड़े पर लिखा गया था। बादशाह ने हाथ पढ़ा और खुश हुआ। मुकबिल वफादार और उसके साथियों को इनाम से नवाजा और हुक्म दिया कि हर रोज दरबार में आया करें और दोपहर का खाना हमारे साथ खाया करें। एक रोज बड़ा अजीब वाक्या हुआ। लोगों ने देखा कि सुरमई रंग की एक खूबसूरत और नन्नी मुन्नी फाख्ता आई और नौशेरवा के महल की सबसे ऊंची बुर्जी के कलश पर जा बैठी। ये कलश सोने का बना हुआ था। फाख्ता की गर्दन में स्याह रंग का एक बारीक मगर बेहद जहरीला सांप बैठा हुआ था। اس وقت نوشیروا کو خبر مل گئی. بادشاہ اپنے وزیروں، امیروں اور پہلوانوں کے ساتھ باہر نکلا اور کلش کی جانب دیکھا. لوگوں نے ٹھیک کہا تھا، فاختہ کی گردن میں سانپ لپٹا ہوا تھا. نوشیروا نے ٹھنڈی آہ بھر کر کہا، یہ فاختہ اپنی فریاد لے کر ہمارے محل میں آئی ہے، مگر افسوس کہ ہم اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتے. ایک پہلوان آگے بڑھا اور عرض کی اجازت چاہی اور کہا، غلام اپنے تیر سے اس سانپ کو ہلاک کر دے گا. نوشیروا اس کی طرف دیکھ کر ہنسا اور کہا، لیکن یہ سوچ دو کہ اگر تمہارے تیر سے سانپ کے بجائے فاختہ ہلاک ہو گئی تو ہم تمہیں بھی زمین میں گڑوا کر تیروں سے چھلنی کرا دیں گے. یہ سن کر پہلوان کانپتا ہوا پیچھے ہٹ گیا. اب نوشیروا نے اپنے سب سپاہیوں اور نشانچیوں سے کہا کہ جو شخص فاختہ کو نقصان پہنچائے بغیر سانپ کو ہلاک کر دے، اسے ہم اپنے گلے کی مالا عطا کریں گے. اس مالا میں 18 موتی ہیں اور ہر موتی کبوتر کے انڈے کے برابر ہے. ایسی قیمتی مالا دنیا میں کسی اور بادشاہ کے پاس نہیں ہے. اتنے انعام کا وعدہ بادشاہ کی طرف سے کیا گیا، مگر کوئی بھی سورما اسے حاصل کرنے کی جرات نہ کر سکا. آہ مقبل وفادار آگے بڑھا اور ادب سے کہا، حضور اجازت ہو تو یہ غلام قسمت آزمائے. اجازت ہے، لیکن فاختہ کو ہلکی سے ہراش بھی نہ آئے. بادشاہ نے کہا، جہاں پناہ کر اقبال سے ایسا تیر ماروں گا جو سانپ کو فاختہ کی گردن سے اس طرح نکالے گا جس طرح مکھن میں سے بال نکال لیا جاتا ہے. مقبل نے کہا اور تیر کمان لے کر محل کے صحن میں آیا. ہزارہ لوگ محل کے اندر اور باہر کھڑے تھے یہ تماشا دیکھنے کے لیے، اور ہر طرف ایک گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی.